اور جہاں پر 40 ہاتھ کھودنا چاہیے وہاں پر آپ نے 5 ہاتھ کھود کر کے کہا جی بھائی پانی کا نکلا نہیں, چھوڑ دیا بیٹھ تو ملے گا پانی. اپنی انتم بندو تک وہ شردھا ہونی چاہیے اور بھکتی ہونی چاہیے, تب وہ جا کر کے بھگوان ملیں گے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں بھی سب دنیا سے نہیں ہوگا, چرم اوستھا تک رہے گا. اس لیے چیتنیہ مہاپربھو جی نے کہا نہ پریم گندھوستی دراپ میں ہرو ترندام سوبھاگ بھرم پرکاش تم بنسی بلاشانن اولوکنم بنا وبھکت جب پران پتنگ کان برتھا. او ہمارا بھگوان کے چرنوں میں تنک بھی پریم نہیں ہے. آپ کو پریم نہیں, آپ تو روتے ہیں, رولاتے ہیں, دن رات ہائے ہائے کرتے ہیں, شام سندر میرے کہاں ہے, ان کے درشن سے ہمارے پران پھٹ رہے ہیں, پشو پکشی بھی دھنیہ ہو جاتے ہیں آپ کے یہ سو. انہوں نے کہا کہ دن نام میں بھگوان کے میں ہمارا اتنا پریم ہوتا تو آج تک درشن نہیں ہوئے, شام سندر کیا میں جیوت رہوں, یہ کیسے سمجھو. مچھلی تو ایک منٹ بھی نہیں رہتی, چھٹو چھٹو کرتے ہیں, پران کو چھوڑ دیتی ہے پانی کے بنا. اب میں کرشن کا درشن نہیں کر پا رہا, ابھی تک بچا ہوا ہوں تو پریم کہاں ہے؟ تو ہمارا پریم اس بندو تک ہے, اس کیرتن میں ہے, اس پروچن میں ہے, نہ سادھن بھجن میں ہے. خوب آرام سے بھکشا کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, رسوئی بنتی ہے اور خوب کھاتے پیتے ہیں, سادھن بھجن کا. راتن جی کا کیسی استھتی تھی, رگھناتھ جی کی کیسی استھتی تھی, دن بھر میں اتنا مٹھا مل جاتا بس اسی کو گرہن کرتے, اپنا دن بھر بھجن کرتے تھے, رات میں سوتے نہیں, دن میں سوتے, ایکادشی اتیادی کے دن ہی نہیں, پرتی دن ہی آشا کرو سادھن بھجن کرتے, تب تم تمہیں. اس لیے ویسا ہونے کے لیے کہیں میاں کو کہ میاں جب تک کرپا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, اور کرپا کا مول کارن ہے دینتا, اور دینتا کہاں سے آئے گی؟ دگنتا سے. دگنتا کہاں سے آئے؟ سادھو کے سنگ میں آئے گی. اس لیے سادھو سنگ ہی سب کا. ایسا جدی سندر اپیوگی اور انکول سادھن سادھک ہو. آگے یہ بتلائیں گے, آگے اور اسپشٹ کریں گے ہم, اس کے ساتھ ساتھ میں اس وشے کو اسپشٹ کریں گے. चचास्मिन् शपति मथुरा मंडले ज्ञान मात्रात् सिद्धे युक्ता सदा समये कस्य कस्यापि नैव किन्तु तस्य प्रियजन कृपा पूरता कस्यचित् स्युः तद्भक् तद्भो मातश्चेनु पदरजस्त पदैक प्रियानाम्. आप यदि ऐसी दीनता चाहती हैं, आप भगवान की कृपा यदि चाहती हैं, तो आप آپ متھرا منڈل میں اس بھوم برندابن میں ہی جدی کریڑا میں ویست مدن گوپال کو درشٹی گوچر کرنا چاہتی ہیں, دیکھنا چاہتی ہیں, تو ابھی یہاں پر دیکھیں گے نہیں, سادھو سادھارن روپ میں وہ نہیں دیکھیں گے. کب دیکھیں گے؟ برہما جی کے ایک دن میں ایک بار ستم منوتر میں. کون منو؟ سوامبھو منو کو ستم منوتر میں ستائیس چتر یوگ کے داپر یوگ
میں داپر یوگ
انت میں ایک بار وہ اپنی کریڑا کرنے کے لیے پریکروں کے ساتھ میں آتے ہیں. اس میں کوئی شردھالو ویکتی کم تھوڑی سی بھی شردھا ہو تو برج میں جانے پر یہ سب لیلاؤں کو درشن کر سکتا ہے, سادھارن آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ تو سمے ابھی آئی ہے نہیں بھیا, کرشن تو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے, کرشن چلے گئے, اس کے بعد میں پرکشت مہاراج جی وہاں کا راجیہ سنبھالے اندر پرست کا, اور پرکشت مہاراج جی انتم سمے میں اپنی میا کو یہ سب کر. کرشن گئے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ 10-5 برس 20 برس 30 برس 40 برس ہو گیا ہوگا یا 50 برس, تب کی یہ بات ہے. اس لیے وہ لیلا تو برج والی لیلا تو بہت دن پہلے ہو گئی ہے, اس لیے برج والی لیلا کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور سمیوں میں مدن گوپال کے جو پریا ویکتی ہیں ان کے پریکر جو ہیں ان کی جدی کرپا آپ پر ہو جائے تو جب کبھی بھی آپ ورنداون میں اسی ورنداون میں ہی کرشن کی لیلاؤں کو سب دیکھ سکتے. کن کی کرپا؟ بھگوان کرشن کے, رادھا جی کے جو پریکر ہیں ان کی جب لیلا کے پریکر ہیں, یا کوئی بھی پریمی بھکت ہو ایسا جو بھگوان کا درشن کر لیا ہو اور ان کی کرپا آپ پر ہو جائے تو آپ ابھی بھی اس ورنداون میں بھی کرشن کو سپریکر لیلا کے سمیت آپ دیکھ سکتی ہیں.
ऐसा होना लाखों करोड़ों में से भी सिद्ध भक्तों में से कोई एक के लिए संभव, सबके लिए संभव है। सुनते हैं जब वृंदावन में सेवा कुंज में रासलीला होती है, अभी भी रात बंदर अपने आप निकल करके बाहर में चले जाते हैं, कोई बंदर को हटाना नहीं पड़ता है, और सब निकल करके एक एक बच्चा निकल जाएगा रात में, और कोई भी व्यक्ति वहां पर रहेगा नहीं। और वहां पर राधा कृष्ण के लिए सुंदर सफेद चादर पलंग पर बिछा दी जाती है, मालाएं गूंथ करके रख दी जाती हैं, सजा करके उनके लिए पान की बीड़ा कुमकुम इत्यादि सब रख दी जाते, सेवा के उपकरण सब। सवेरा जब भी उसको खोलते हैं 7-8 बजे तो माला अस्त व्यस्त ताला में बंद सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, सब चीजें बिखरी हुई रहती हैं, मानो से कोई खेल तमाशा करके चला गया, क्रीड़ा करके चला गया, और ऐसे में किसी ने पहन लिया, पहन करके उतार करके जैसे वो मलिन हो जाती है, ऐसे वो मालाएं रहती हैं और सब चीज बिखरी हुई। सुनता हूँ जो कभी कभी किसी ने प्रयास किया जो उसकी टपक करके प्राचीर और उसमें रात में चले जाए तो सवेरे उसकी लाश हुई, और कहाँ तक सत्य है कहाँ तक क्या है, किंतु कृष्ण की रासलीला प्रतिदिन जो होती है इसमें संदेह नहीं है, किंतु साधारण आदमी नहीं देख सकता। यदि ऐसी बात तो कोई जाकर के क्यों नहीं देख लेता है, प्राण प्यारा है कि दर्शन प्यारा है, ऐसा कोई भक्त तो जाकर के परीक्षा करे तो करेगा कोई, कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो कृष्ण से प्रेम ऐसा भी नहीं है, जिसका ऐसा प्रेम होगा जब वो कूद करके चला जाएगा, प्राण जाएगा किंतु दर्शन तो हो जाएगा, और नित्य काल के लिए मुक्त होकर के कृष्ण के लीला पर कर जाएगा। गली बड़ी सकरी है ना, बड़ी सकरी प्रेम की गली, इस जगत में भी प्रेम बड़ा महंगा है, शादी नहीं प्रेम मिलता, तो जगत का प्रेम तो काम होता है, इस प्रेम में ही काम में ही इतना परिश्रम और इतना ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो भगवान के प्रेम के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है। एक बात तुमको जो बताया अच्छी तरह से आप सुनो, यदि वैसा कोई परिकर मिल गया भगवान का, कृष्ण का, राधा जी का, विशेष करके ललिता जी की सखियों की अनुचरी की किंकरियों की किंकरी यदि कोई मिल गई, और उनकी चरण जगत को यदि आपने ग्रहण कर लिया, उसके द्वारा अभिषिक्त हो गई, तो ब्रज का दर्शन और कृष्ण का दर्शन चुटकी बजाते हो जाएगा। राम महाराज के ऊपर ध्यान में बताया गया ना, सो बाज रजोभिषेकम नैषा मतिस्ता पूर्वोक्तमा, भगवान के चरणों में मति लाने के लिए भी भक्तों की चरण धूलियों से अभिषिक्त होना पड़ेगा, क्यों शरीर ही नहीं, मन शरीर इंद्रिय सब कुछ आत्मा तक, और प्रेम के लिए ऐसे भक्त यदि हों उन्नत श्रेणी के प्रजरस रसिक हो, और उनकी चरणों की धूलि में अपने मन काम सबको रंगा दिया, फिर वो रंग निशा करे नहीं, एक रंग होता है किसी चीज में लगा देने पर, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा है ना, और उसको साबुन या सोडा दे करके धो दे उतर जाए, और कोई रंग आग में गर्म करके पक्का रंग बना करके दिया जाए सही नहीं, पक्का रंग हो उसमें दीनता के साथ व्यक्तता के साथ निकल हुआ, और उस ऐसे ब्रजवासियों की चरण की धूलि जो राधा जी की अपनी खास सेविका है, उनकी चरण धूलि में आप यत्नपूर्वक आप स्नान करें, तद भक्तो मातश्चिनु पद रजस्तत् पदैक प्रियानां, उनकी जो प्रियाएं हैं ललिता विशाखा इत्यादि, उनकी जो दासियां हैं यदि आप चाहती हो तो उनके चरण रज में अभिषिक्त हो जाए। अब ये कौन रस उसको दे रहे हैं,
मधुर
रस हैं अपने कौन, इनका भी ठीक नहीं समझा जाए, किंतु इससे मालूम होता है कि वो भी वो थे, अपने तो ये दे नहीं
सकते, विवेचन करना मधुर रस
जिसका सौभाग्य होगा,
नहीं परीक्षित महाराज के बारे में तो कहा प्रति संदर्भ में रस विचार में
कर सकता है समझ सकता है, जिसको कुछ है इसके पल्ले कुछ है ही नहीं वो क्या विचार करे, इसलिए ऐसा जैसा ये कर रहे हैं सनातन गोस्वामी बात स्वयं टीका में उसी के द्वारा हम लोगों को मान लेना
पड़ेगा।
अभी बोलते हो जैसे अभी वहाँ का तैयार हुआ कि नहीं, राधा कृष्ण को
तैयार है, सब कुछ
तैयार है। अच्छा, अंत में यह बतलाया बिना दिन तक बिना प्रेम का नहीं होगा, प्रेम कैसे होगी जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, और कृपा कैसे होगी दीनता के द्वारा, दीनता कैसे होगी ब्रजरस के रसिक जो भक्त हैं अथवा रागात्मिक भक्त हैं उनके अनुगत्य में उनकी चरण की धूलि में जो स्नान किए हुए राधानुगा भक्त हैं, जैसा कि दिख रहा है रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, इन लोगों के चरणों की धूलि में स्नान करने से भी वो हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तब एक बात बतलाया, चरण रज की धूलि में स्नान करने से ऐसा। इसके बाद में और भी दो चार गुण बतलाएंगे, अब कल हम लोग उसके संबंध में विचार। तब भक्ति को पाने के लिए यही विशेष करके प्रेम भक्ति, रगन का अथवा रगात्मिक का भक्ति पाने का एकमात्र, बिना भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, ऐसा समझ करके ऐसे भक्तों का आश्रय करना चाहिए और प्राण दे करके भी उनकी सेवा करनी चाहिए। और नहीं तो जन्म जन्मांतर का, लाखों कोटि जन्म में भी साधारण एक भक्ति का भाव भी नहीं, बस रसाभास होगा अथवा भक्ताभास होगा, अथवा कुछ अपराध हो जाएगा। वंचा कल्प
कृष्ण झूलन यात्रा फेस्टिवल, बाट श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज लेक्चर्ड फॉर्म श्री बृहद भगवतामृतम कंपोज्ड बाय श्री सनातन गोस्वामी पाद गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। टुडे इज अपीयरेंस डे ऑफ श्री बलदेव प्रभु श्री नारायण गोस्वामी महाराज लेक्चर्ड वन डे अबाउट श्री बलदेव प्रभु एंड टुडे ऑल्सो लेक्चर श्री बलदेव प्रभु।
उनका जीवन चरित्र मैंने वर्णन किया और उसकी शिक्षाओं को भी हमने कुछ वर्णन किया था। जो अवशिष्ट रह गया है, जो अवशिष्ट रह गया है बलदेव जी का कुछ चरित्र हमने सुनाया, तो उसमें से कुछ बातें रह गई और उसका संक्षेप में कुछ करना। वैसे बलदेव जी का चरित्र अनंत है, रूप में कुछ कुछ दिया गया है। वैसे ये जो कुछ सृष्टि इत्यादि है ये सब इसके मालिक कौन है? इन्हीं से जितने अवतार निकलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ भी होता है ये सब कुछ उन्हीं का ही खिलवाड़ है। बलदेव जी का हमने वो बताया था, हेमकासुर वध, प्रलंब वध, मुष्टिका वध, मुष्टिका मुष्टिक और चारु, कृष्ण को चारु या मुष्टिक को बलदेव जी में, ये सब बातें हमने बतलाई थी। जब कृष्ण की प्रजलीला समाप्त हो गई तो कृष्ण बलदेव जी मथुरा आए और मथुरा में जरासंध ने आक्रमण किया, जिसमें जरासंध ने आक्रमण किया उसी समय काल जमन ने एक तरफ से आक्रमण किया। मुचकुंद जी के द्वारा काल जमन का वध कराया कृष्ण ने, और इसके बाद में जहां लौट रहे थे जरासंध ने आक्रमण किया। कृष्णचंद्र जी ने देखा कि उनसे कैसा लड़ा जाए, कृष्ण और बलदेव जी ने कुछ परामर्श किए और परामर्श करके
थोड़ी सी मुश्किल है सेना को लेकर। ये जो भी होली गेट है, यही पर एक केवल गेट था, उस गेट से नहीं गई काल जो उनकी सेना ने घर में सब खड़ी थी जरा सुनने और जो की तरफ से गेट रखा था। देखते देखते कृष्ण ने रथ का आह्वान किया और अपने अस्त्रों का दो सुंदर सुंदर रथ आकाश मार्ग से ये पर माथुली इंद्र का सारथी वो कृष्ण के सामने उतर करके आया और उसने कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्मी इत्यादि सब लेकर के ऊपर और दूसरे पर हल और कुशल और उसकी ध्वजा की ताप और कृष्ण के का जो रथ था उस पर ध्वजा की गरुड़ थी। कृष्ण ने कहा कि भैया अब हम दोनों आदमी अवतार लिए हैं असुरों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का अभिभार हरण करने के लिए, गरुड़ जी से कहा और आप अभी रथ पर सवार होइए, हम भी रथ पर चढ़ते हैं और आपका प्रिय अस्त्र भी फल और कुशल ये यहाँ पर आए उनको भी ग्रहण कर बस थोड़ी सी सेनाओं को लेकर के और उनकी सेना के अंदर में प्रवेश कर गए। अथा अनंत सेनाएं कितनी 2300 या कितनी जो महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं के से भी अधिक चारों तरफ से ढक लिया, उनकी मुस्लिम सेनाओं का कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे बाण से बरसा की सब कुछ ढक गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अट्टालिकाओं में चढ़ करके देख रही थी कृष्ण के और बलदेव जी के रथ को, देखा ये सब सेना का कोई चिन्ह नहीं, कृष्ण बलदेव का कोई चिन्ह नहीं, अब तो वो विलाप करते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और इधर में खूब जोरों से युद्ध चलने लगा, बलदेव और कृष्ण ने परस्पर इशारा करके युद्ध आरम्भ किया। कुछ क्षणों में ही समस्त सारी सेनाओं को कृष्ण और बलदेव जी ने दोनों ने ही एकदम समाप्त कर दिया, रक्त की नदी बह चली। उसमें ढाल ऐसे मालूम पड़ता था जैसे ये कछुए हैं, धनुष ऐसे मालूम पड़ते थे ये नदी में तरंग उठ रहे हैं, आदमी के केश जो थे मरे हुए लोगों का वो मालूम होता था जैसे सिवार है, सिवार मैंने वो चिखर में लग जाते हैं काई टाई ऐसे लगे हुए हैं और आदमियों के रुंड मुंड घोड़े और ये सब मालूम होते हैं जैसे ये नक्र मकर हैं उसमें, और उसमें हाथी मानो दीप निकले हुए हैं उस नदी के में, बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित। इनकी सेना में कोई भी नहीं मरा कृष्ण की, और उनमें सारे मरे। और उस समय बलदेव जी ने अपना विक्रम दिखाया जो जरासंध का कोई समान वीर जगत में नहीं था, वो पहले तो ये डीघ हाँक रहा था, कृष्ण को कहा मैं तुमसे नहीं लड़ता, तुम तो चोर चोरते हो और कितनी बार पीछे भगे हुए और झूठ बोलने वाले हो, लबार आदमी हो, और तुमने अपने मामा का पद किया है वो भी धोखे से बद किया, तुम जैसे नापुंसक आदमी से मैं लड़ना नहीं चाहता, और बलदेव को यदि इच्छा है तो जल्दी से उसके शरीर को कुत्ते और सियाल खाएंगे और गिद्ध नोचे तो वो जल्दी से आ जाओ वो हमसे लड़, किंतु आप तुम्हारी रक्षा नहीं ये समझ करके हमारे पास में आए, तुम दो लोग बच्चे अभी दूध पीने वाले हमसे लड़ने के लिए आ गए, तुमको तो छोड़ करके भाग जाना चाहिए था। कृष्ण ने कहा कि वीर लोग ऐसी बातें नहीं करते, अवतार भूमि में ही इसका पता चलेगा। तो वो कृष्ण को छोड़ करके बलदेव जी से, जब सब सारी सेनाएं मर गई कट फट करके खत्म हो गई, बलदेव जी ने क्या किया, हल लिया और हल से उसको खींच लिया और मुसल उठाया कि बस मरे और खत्म हो जाए, इतने में झट कृष्ण दौड़ करके आ गए, ऐसा ना करे भैया मर जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, अभी इसकी अभी ये हारेगा यहाँ और हार करके फिर अपमानित होकर के जाएगा, फिर लाखों सेनाओं करोड़ों को लेकर के आएगा
कभी भी इसको मारेंगे मत, इसे छोड़ देंगे। इस मरे हुए को क्या मारना है? जैसे शेर बकरी को पकड़ लेता है, ऐसे बलदेव जी ने उसे पकड़ लिया। कृष्ण ने उसे छोड़ा दिया तो बड़ा अपमानित हुआ, ये सब छोटे बच्चे जिनके लिए मैं ये करा था उन्होंने हमें छोड़ा दिया, लज्जा सज्जा पृथ्वी में घूमे गड़ी करके मर जाता, मुख नहीं देखा, अपमानित हो गया। कृष्ण ने उसे छोड़ा, छोड़ दो छोड़ दो, तो अकेले लौट कर ले गया। सोचा जाओ अब यहाँ हम हिमालय में जाएंगे तपस्या कर। इतने में वो सब कुछ लोग मिल गए उसके पक्ष वाले। अरे ये तो काल की बात है, काल की गति मुझे नहीं जाती, प्रारब्ध से ऐसा हुआ, कृष्ण ने आपको हराया, प्रारब्ध ने हराया। थोड़ी सी सेना, ये दूध मुख बच्चे लड़ना जानते नहीं और हम लोग हार गए, ये प्रारब्ध की बात है। अब इस पर फिर से आक्रमण करना है, हम सब लोग इस बार आपकी सहायता करेंगे, डरने की अब जरूरत, आप केवल खड़े रहेंगे और बाकी हम सब काम करेंगे, लड़ेंगे, सेनाओं की कोई कमी नहीं, हम लोग सब सेनाएं हैं। वो फिर उसमें उत्साह आया, घर लौट गया और इसके बाद में फिर सेनाओं को संग्रह कर करके इसी तरह से 17 बार उसने, 18वीं बार अब प्रत्येक बार बलदेव जी से पकड़ लेते और फिर कृष्ण छोड़ा दिया। 17वीं बार जब आया तो कृष्ण और बलदेव भग गए जानबूझ कर, और उसने सोचा जी डर करके भग रहे हैं। और सुबर्शन पर्वत के ऊपर जो द्वारका के पास में जहाँ पर सब समय वर्षा होती थी, प्रवर्षण पर्वत के ऊपर में कृष्ण चढ़ गए, चारों तरफ में ढूंढावाया कहीं नहीं मिले, अंत में देखा कि पेड़ पौधे इसमें लगे, बस आग लगा दी नीचे से, किरासन का तेल ढाल करके और चारों तरफ में आग लगी। कृष्ण ऊपर चोटी से कितना माइल दूर, कितना 18 योजन लिया, कितना वहाँ से ऊपर से झट नीचे दोनों भाई कूद पड़े और कूद करके द्वारका चले गए। इन लोगों ने समझा कि हमने मारी करके खत्म कर दी। जब पीछे पता लगा जा रहे वो तो अभी जीवित है, बड़ा एक अफसोस हुआ। इधर फिर सेनाओं को संग्रह में लग गया और इधर बलदेव जी और कृष्ण सब लेकर के द्वारका में पहुंचे। एक दिन नहीं मत, रात नहीं मत, थोड़ा करी यहाँ से संपूर्ण जितने नगरवासी थे, ब्राह्मण और सब कन्या और जितने लोग थे मथुरा, रातों रात में जोग माया के प्रभाव से सब कुछ वहां पर चला गया। और इससे भी सुंदर रमणीय जनपद वहां पर जोग माया के प्रभाव से सुंदर बगीचे, सुंदर उपवन, सुंदर मनोरम ये सब जल के ये सब व्यवस्थाएं हुई और वहां पर सब क्या करते बस गए। एक दिन बलदेव जी कृष्ण जी दोनों सभा में बैठे थे, इतने ताल वृक्ष से भी ऊंचे एक स्त्री और एक पुरुष दोनों वहां, उसको देख करके गांव वाले देखा गया तो बगीचे में आकर के बाहर में ठहर गया। ये घरों में महल में वो प्रवेश नहीं कर सकता था, यदि प्रवेश करेगा तो वो सिर लग जाएगा। कितना ऊंचा, 50-60 हाथ ऊंचा ताल का वृक्ष, ऐसे वो स्त्री भी और एक पुरुष भी। अब देखने के लिए डर के मारे कहीं दैत्यदान है ना कि क्या है, उसको देखने के लिए समस्त नगर के लोग बड़े दूर से देख रहे हैं, किसी का साहस नहीं है उसके पास में जाए। और वो भी देखा जाए मैं कैसे जाऊँ, वो कृष्ण से मिलना चाहता था, वो वहाँ पर खड़ा हो गया। कृष्ण को पता लगा, कृष्ण भी गोली पर बैठे थे पालकी पर, वहाँ पर पहुँचे, बलदेव जी को भी साथ ले लिया और भी द्वारकापुर में उस समय राजसभा में जो लोग बैठे थे सब चल पड़े। वहाँ पर पहुँचने पर वो कृष्ण को देखते ही एकदम प्रणाम किया, कृष्ण कहा कि आप ये कौन हैं और आपके साथ में ये जो महिला है ये कौन है? उन्होंने बताया जैसे आप शायद सुने होंगे अनर्थ देश में बहुत पहले एक राजा थे, उनका नाम ये याद नहीं आया, उनके पिताजी, तो उनके पुत्र मैं हूँ और मेरा नाम रहेगा उनका मैं। तो यह सतयुग की बात है, ये मेरी लड़की है, मैंने इसकी हाथ की रेखाओं को ज्योतिष के ऊपर मैंने देखा, देखकर के मैंने देखा कि इसके योग्य पर इस जगत में नहीं है। मैं झूठते 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 चारों तरफ में झूठा, बहुत सोचा विचार किया किंतु ऐसा योग्य पर ही इसको नहीं मिला। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, लड़की का दाय तो बड़ा होता है ना, जब तक लड़के की शादी के लिए कोई बात नहीं, लड़की यदि उम्र हो जाए उसकी शादी ना हो तो पिता के लिए सबसे बड़ी भारी चिंता की बात है। आजकल कोई चिंता की बात नहीं, नौकरी में लगा दिया और फिर अपना लव मैरिज हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि प्राचीन काल में तो ये चीज़ें थी नहीं, आजकल लड़कियां हो जाए 10-20 तो कोई भी बात नहीं, पहले बड़ा। अभी भी जो सभ्य आदमी हैं, अच्छे सज्जन हैं, उनको तो बड़ी चिंता रहती है। वो ब्रह्मा जी के पास में चले गए। जो ब्रह्मा जी के पास में जा सकता है उसकी सामर्थ्य तो समझिए कि कैसी सामर्थ्य है, साधारण आदमी तो जा नहीं सकता। और साथ साथ में उस लड़की को भी लेकर के चले गए, कैसे गए होंगे, ऐसा जो तपस्या का बल होगा जो मैं तो जान नहीं सकता। पहुँच गए ब्रह्मा जी, उस समय कुछ हरि कथा श्रवण में या कुछ में लगे हुए थे, देख करके उस रात्रि बल ले कैसे आया, ये मेरी कन्या। और उसके जो चिन्ह मैंने देखा जैसे ये इसकी शादी साधारण लोगों से नहीं होना, अतः इसके शादी के लिए वर किसको आपने नियुक्त किया है, जब लड़की है तो वर भी नियुक्त किया होगा, तो आप हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तुम पृथ्वी में लौट जाओ, पृथ्वी लोग किंतु अब वो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो है किंतु रहने वाले सब बदल गए, यहाँ का एक क्षण जितने हम बातचीत कर रहे हैं और पृथ्वी लोक में कल्प जैसा हो जाता है, इसलिए जल्दी से जाओ। और इसी समय में भूलोक में स्वयं भगवान आविर्भूत हुए हैं और वही द्विधा भाव में हैं, मैंने दो रूपों में, अभी एक बड़े भाई के रूप में हैं और छोटे भाई के रूप में स्वयं भगवान हैं। और जो बड़े हैं वो मूल संकर्षण हैं बलदेव प्रभु जी। तुरंत चले जाओ, अभी एक मिनट की देर मत करो, और वहाँ जा करके बलदेव जी को अपनी कन्या को सुना। मेरी लड़की तो सतयुग की, अभी अभी की हम लोग आए हैं इतने लंबे, अब तो कलयुग आने वाला है, मनुष्य तो बैंगन में भी सीढ़ी लगा करके तोड़ेंगे फल, अभी अभी समय नहीं आया, किंतु हो सकता है ऐसा समय आए, बहुत छोटे हो जाएंगे। आजकल लड़कियां भी स्त्रियां भी कौन जैसी ऐसी छोटी छोटी होगी, और इसी अवस्था में छोटी छोटी भी बाल बच्चों को पैदा करने वाली होंगी, और पुरुष भी नाटे खाते होंगे। तो अब जाकर के मैं कैसे शादी करूँगा, हमारी लड़की 50 हाथ लंबी और उस समय तो 3.5 हाथ लंबे, वो कैसे शादी होगी। कोई चिंता मत करो, जो सब भगवान संविष्ट की सृष्टि करने वाले हैं, जिनके उदर में विश्व ब्रह्मांड समाया है, वो प्रभु हैं, तो उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाएगा। बलदेव जी स्वयं ये काम कर लेंगे, आपको ये चिंता जा करके समर्पण बस कर दें। बस वहाँ से छठ अवतरण किया पृथ्वी में, और द्वारका में मैं इसीलिए मैं आया हूँ, आप लोगों के स्वागत हूँ। अब मैं बलदेव जी को अपनी कन्या समर्पण करना चाहता हूँ, अब बलदेव जी को आप बुला करके और उनको समझा दीजिए, और देवकी वसुदेव जी भी आ जाएं। ऐसा कहकर के थी राजधानी में ले आए उनको कृष्ण, और बलदेव जी को उस कन्या को समर्पण किया। बलदेव जी ने क्या किया, अपना हल लिया और लेकर के ऐसे खींच लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था, जो कुब्जा को क्षण मात्र में ही उसको पकड़ करके उसकी कुब्जाई को जरा ऐसा कर दिया और परम सुंदर दिव्य नारी हो गई, तो कृष्ण बलदेव के लिए ऐसा ही असंभव नहीं है, ये भी हो जाएगा। बस बलदेव जी ने उसको अपने से भी छोटा अपने कंधे के बराबर उनको खींच करके परम सुंदरी और ये बना, बलदेव की रेवती जी कौन है, लक्ष्मी जी, बलदेव की नित्य अर्थांगिनी, उनकी शक्ति है।
स्त्री और पुरुष के रूप में ना देखा जाए, शक्ति और शक्तिमान के रूप में उनको देखा जाए। कल हमने बताया था ना कि बलदेव प्रभु जी संधिनी के मुक्त विक्र हैं, अधिष्ठात्र देवता, और कृष्ण किसके हैं? संबित के, चित के, और श्रीमती राधिका जी हैं। ये तीनों मिलकर के भगवत तत्व है। अलग अलग विचार करने से ऐसा, किंतु तीनों मिलकर के ही है। तो बलदेव प्रभु जी सत संधिनी के मुक्त विक्र हैं, तो उनकी ये शक्ति है रेवती जी नित्य। उनकी दो स्त्रियां काला जी, एक वरुण जी ने भेजा था बारुणी, और ये है रेवती जी। रेवती जी उनकी नित्य शादी कहाँ हुई? कुछ लोग कहते हैं, ये तो हम द्वारका की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दाऊ जी में हुई, किंतु तो दाऊ जी में ये नहीं हुआ। दाऊ जी में रेवती का दर्शन लोग दिखलाते हैं, किंतु ये उचित नहीं, यहाँ पर ये शादी नहीं। जैसे आजकल कृष्ण का भी यहाँ पर देखेंगे जन्मभूमि पर राधा जी भी पहुंच गई जन्मभूमि में, और कृष्ण भी बंसी लिए हुए खड़े हैं और वो भी लगा रखे होंगे, किंतु यहाँ पर ना बंसी की जरूरत है ना राधा जी आएंगी, और ना कभी ये वो जन्मभूमि में। वहाँ पर तो आदि केशव जो है शंख चक्र लगा पद्म लिए हुए, वही वहाँ पर विग्रह विधिवत स्थापित था, और बद्रीनाथ जी ने किया था, और ऐसा ही होना चाहिए। किंतु आज लोगों को रस का ज्ञान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं, बस ठाकुर जी के त्रिमूर्ति बना करके पैसा दे करके खरीद लिया और लेकर के कर दिया, और वहाँ पर दुर्गा जी भी हो जाएंगी, कृष्ण उनकी दुर्गा जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी भी वहाँ पर आ जाएंगे, हनुमान जी बैठेंगे, और साथ साथ में हनुमान जी का एक खुददार जी और मालवी जी भी वहाँ पर कृष्ण के आमने सामने बैठ जाएंगे। सब मिसाली वहाँ पर खिचड़ी बनी हुई है, और वैष्णव को दुख होता है तो क्या करेंगे, वो झगड़ा तो कर नहीं सकते, किंतु तत्व की दृष्टि से संपूर्ण रूप से गुप्तान चीजें हैं। हमारे गुरु जी एक बार आए, उस समय ये सब नहीं था, इसमें नीचे वाला केवल मंदिर था, हाथ में बंसी थी उनकी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर ये बंसी कब से उन्होंने धारण करते हैं, हमने सुना था कि वो मथुरा में बंसी लेकर के नहीं आते हैं, बंसी का कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा इनको भोगों क्या लगाते हो? तो उनको दिन में हम लोग वो मेहंदी दाना होता है,
इलायची दाना,
इलायची दाना, इलायची दाना देते हैं, और शाम को बताशा और मिश्री थोड़ा सा, तो यही सेवा होती है यहाँ पर ठाकुर। जैसे ठाकुर की यहाँ ही नहीं है, बस जन्मभूमि का वो भूल उठाया और सिर पर दिया और प्रणाम कर दिया, फिर वहाँ से चले। तात्विक लोग जो भक्तिमान लोग पुरुष हैं, इनको ये सब चीज़ों को देख करके दुख होता है, किंतु समझाए कौन और समझे कौन, समझे गए प्रतिबिंब महाप्रभु जी को भक्त के रूप में वहाँ पर बैठा दिया, कहाँ स्वयं भगवान कृष्ण से भी कृष्ण, महाप्रभु जी की विशेषता कृष्ण अकेले कृष्ण है, वहाँ पर राधा और कृष्ण मिलकर के महाप्रभु जी, उनकी विशेषता तो और कुछ होनी चाहिए, वो यदि महाप्रभु नहीं आता राधा कृष्ण बनना जगत में प्रचारित नहीं तो उल्टा ही हो रहा है, क्या शादी कर रहे हैं वो अब तक, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत को साथ हो सकता है, जगत के लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो वहाँ पर उनका विवाह हुआ। कृष्णचंद्र जी, रुक्मिणी जी और बलदेव जी ब्रज में रहते थे, ये तीनों आए, बीच में से बलदेव जी उलाहना देते थे कृष्ण के, अरुणी जी भी कृष्ण को उलाहना देते थे, तुम झूठे हो लगा हो, तुम कहते हो कि ब्रज से तुम्हारा प्रेम है, किंतु हम देखते हैं कि तुम्हारा ब्रज से कोई भी प्रेम नहीं है, बड़े झूठे हो मक्का, ऊपर से तो गोपियों के विरह में मानो तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं। अरे भाई वहाँ पर चलने में हर्ज क्या है, बहुत काम यहाँ पर है, जरासंध के लिए आ गया, अरे आप मिथिला जा सकते हैं, आप हस्तिनापुर जा सकते हैं, आप और जगह जा सकते हैं, दो मिनट के लिए चार मिनट की दूरी पर जो बसा हुआ ब्रज है वहाँ पर नहीं जा सकते, अजी आप वहाँ जा करके रहिए, मत जा करके फिर करके भी चले आ सकते हैं, जब नहीं आए तो फिर उद्धव जी को भेजा, उसके बाद ही ये नहीं आए, तो देखा जैसे अब ये आएंगे नहीं तो मैया को प्रणाम करके बोले जब मैं आप तो जाता हूँ, ये जाएगा नहीं, कृष्ण को बहुत भारा पड़ा, कहा कृष्ण वहाँ पर बड़े दुखी हो गए, ये आप ठीक ही कर रहे हैं, बस वहाँ से आए। दो महीने यहाँ पर चैत्र मधुमास और मैंने बसंत ऋतु के दो महीने यहाँ पर, तो जिस समय आए लोगों को बहुत ही शांत कराएंगे। श्रीमद् भागवत में संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन मैं पढ़ देता हूँ। सुनो प्रेम भरी चितवनों से गोपियाँ निहाल हो गई। उन्होंने हंस करके पूछा बलदेव जी से, क्यों बलराम जी? बलदेव जी, नगर के नारियों के प्राण बल्लभ कृष्ण और सकुशल तो हैं, यहाँ तो बहुत कष्ट से रहते थे, अब तो उनको मन लगाने लायक बहुत सी चीजें वहां पर मिल गई। अरे इन्हें क्या पहले वाले भाई बंधु माता पिता ब्रज की गोवर्धन की दक्षिणों की श्रीराम सुबल की नंद जशोदा की कभी याद आती है, कभी भूल करके भी याद आ जाती है, कभी क्या अपने माताओं के माता के दर्शन करने के लिए भी एक बार नहीं। लोग सब कुछ तो भूल जा सकता है किंतु माता को कैसे? अरे हमारा स्मरण न करें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में उनका तो कोई संबंध था नहीं, दिवाली का भी तो था नहीं, बस वचन के ऊपर नहीं परस्पर आंखों से देख करके प्रेम सा था, उसका मुझे तो कुछ मुझे दृष्टि में है नहीं, तो इसलिए अपनी माता का दर्शन करने के लिए तो आई सकते हैं। तो क्या आएंगे? क्या महाभाव कृष्ण कभी हम लोग की सेवा का कुछ भी स्मरण करते हैं कि यहाँ की जो पांच रानियां हैं या मथुरा नगर की जो रहने वाली हैं, ये तो बड़ी सुंदर रूप से सेवा करते गोपियों को, ग्रामीण स्त्रियों को कुछ सेवा करने का, इस रूप में भी क्या कहते हैं? अरे ये पंखा झलना नहीं गोपियां जानती हैं, और ये ऐसी सुंदर सेवा करते हैं, इनको फूल का गजरा करने नहीं आता था, ये तो बड़ी सुंदर पान की बेलियां कितना सुंदर लगाती है, या सीधे रूप में भी क्या प्रश्न करते हैं या पूछते हैं? ओहो वो बड़ी हमारी मन से सेवा करती थी, ये लोग सेवा नहीं कर पाती हैं, किसी रूप में हम लोग का स्मरण करते हैं। आप जानते हैं सजन संबंधी को छोड़ना बहुत ही कठिन, अपने बंधु बांधव सजनों को छोड़ना बड़ा भारी कठिन, अब उनका पालन पोषण करने के लिए अपना श्री काल के अंतर्गत अपने दे देता है, कहाँ कहाँ से डके करके चोरी कर करके सात समुंदर पार जा करके एरोप्लेन में बैठ करके यदि वो चकना चूर हो जाए सबकी परवाह नहीं करके क्या नहीं करता है। फिर भी हमने उनके लिए अपनी माँ को मैया को पिता को भाई बंधु पति पुत्र बहन बेटी सबको हम लोगों ने छोड़ दिया के लिए उस कार्य के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया, परंतु प्रभु आप तो शरण हैं, आपको हम लोग समझा सकते हैं किंतु उन कालों को हम नहीं समझा सकते, उनका लोग बाहर तो वही काला जदि हो जाता कैसे समझाएंगे, वे बातों की बात में चुटकी बजाते ही इतना दिन का प्रेम ने और हम लोगों ने उनके लिए दृष्टि पुत्र परिवार परिजन सब कुछ खोल दिया, मिनटों में चुटकी बजाते ही खुल करके और चले गए। प्रेम सौभाग्य का बंधन काट करके हमें नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोग को बिल्कुल छोड़ ही दिया। हम चाहती तो मैं रुक लेती, उस समय चाहती तो रुक लेती गोपियाँ कह रही, किंतु जब वो हाथ जोड़ करके बड़े गदगद होकर के प्रेम भरी चितवन से मुस्कुरा करके जब ये कहने लगे तुम्हारा उपकार का कभी बदला नहीं दे सकते, न पा रहे हम निर्वर्त संविधान, हम इंद्र की या देवताओं की लंबी आयु पा करके भी जन्म जन्मांतरों में भी तुम्हारे इस पवित्र ऋण का मैं कभी भी बदला नहीं दे सकता, उनका ऋण समय कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे उनके बातों को सुनकर की कौन सी ऐसी जगत में है त्रि जगत में स्त्रियां हैं जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न करें, हमने उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास कर लिया, कल नहीं तो परसों जरूर हम आ जाएंगे, बस विश्वास कर लिया। बस नंद बाबा के जो सभी संबंधी माँ हैं बस गए और देखिए उन्होंने कहा ये सब कुछ उठा करके हम जल्दी से कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे, बस विश्वास कर लिया। एक गोपी दूसरी कहती है सखी ऐसा क्यों कर रही है? बलराम जी हम तो गाँव की ग्वार ग्वार गवार वाली में जा रही हूँ, गाँव की रहने वाली गवार वाली में हम उनकी बातों में आ गए, परंतु उस नगर की जो स्त्रियाँ हैं मथुरा द्वारका की स्त्रियाँ जो हैं वो तो बड़ी चतुर होती हैं ना, शहर वाली हैं, बहुत से लोगों से उनका पल्ला पड़ता है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली हैं तो चतुर होती है, भरावे चंचल और कृतज्ञ कृष्ण की बातों में क्या फंसा गई, वो तो उनकी बातों में नहीं फंस सकती, ये सब प्रेम में भी घोर होकर के कारण है, शरीर की सूझ भी गई, बलदेव जो हमारे जेठ हैं आज ही भूल गए और उनसे खुली एकदम साफ बातें कर रही हैं, उन्हें तो वो छका नहीं पाते। दूसरी गोपी ने कहा नहीं सखी कृष्ण बातें बनाने में कोई एक ही है, उनके समान विषय में कोई बात बनाने वाला दूसरा कोई है ही नहीं है, ऐसी रंग बिरंगी मीठी बातें गढ़ने में बड़े चतुर हैं कुशल हैं कि क्या कहना है, उनकी सुंदर मुस्कुराहट अप्रेम भरी चितवन से नगर नारिया भी प्रेम में व्याकुल हो जाती होगी, उनको भी उठला देंगे पूरा हवस उनके बातों में आकर के इनको अपने ऊपर में उनको उछाड़ कर देती होगी। इस तरीके का हरी गोपियों हम लोग उनकी बातों से क्या मतलब, यदि समय ही काटना है तो दूसरी बात कोई कहो, उनकी बातें भूल जाओ। यदि निश्चुल का समय हमारे बिना प्रतीक होता है तो हमारा समय भी निकल आएगा किसी तरह से, कैसे दुख से ये लक्ष्य वो बातें कर रहे हैं भाई दुख से, तो हमारा भी समय निकल जाएगा। उस निश्चुल की बात एकदम छोड़ हम लोग भाव देखो के सामने भगवान कृष्ण की हंसी प्रेम भरी बातें उनके मधुर आवाज चार चितवन अनुची चार प्रेम आलिंगन मूर्तिमान होगा के हृदय में स्फूर्ति पाने आंखों के सामने और हृदय में नाचने लग गया। वो उनका उसका स्मरण करते 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 आओ भी तो बंदे जी नाना प्रकार से आने लगे, जिन्हें करने बड़े विभू थे रसी भी थे, उन्होंने कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को शांत करा दी। और चैत्र और बैसाख के महीने मणि बदन मणि बिताए, नंद जशोदा इत्यादि सबको शांत कराए। उन्होंने कहा कृष्ण भले ही नहीं आया तुमको पाकर के हम ये समझ रहे हैं ये कृष्ण ही आए, बलदेव जब मैं शीघ्र जाता हूँ उनको साथ लेकर के आऊंगा कृष्ण को, देखेंगे कैसे नहीं आता है। ऐसे धीरे धीरे जाए रात के लोग लौट गए। ये बलदेव जी मूल संकर्षण है, कुछ कुछ लोग जब ये ब्रज में आए तो राश किया था, कुछ लोग उनके विरोधी हैं, कृष्ण के लिए संभाल बलदेव जी के लिए नहीं, क्योंकि शास्त्रकारों ने दिखाया कि वो भी भगवान ही कृष्ण के वो प्रकाश विग्रह हैं, उन्हीं से जितने भी अवतार जितने जो कुछ भी होता है सब उन्हीं से सब कुछ होता है, इसलिए वो भी रास्ता सकते। किंतु यही एक बात है उनकी गोपियाँ और कृष्ण की गोपियाँ अलग, जैसे कल हमने बताया था बलदेव ने जिस यमुना का आकर्षण किया वो विशाखा यमुना जी के प्रकाश में, वो साधारण आदमी उसका विवेचन नहीं कर पाता है। रुक्मिणी हरण रुक्मिणी जी इसके बाद में बलदेव जी और जो थे वो ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर के रुक्मिणी का पत्र दिया, कृष्ण जी अकेले ही चल पड़े क्योंकि बलदेव जी अकेला नहीं छोड़ा, पीछे से सब चक्रों में भी सेना लेकर के और उनके पीछे पीछे चले। युद्ध जिस समय में हुआ कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जब देवता देवी की पूजन करने आ रही थी सबके सामने उनको रथ पर बिठा करके चल पड़े। इतने में जरासंध के अंगत ने जितने बड़े बड़े नरेश जो आए थे जो शिशुपाल का बड़ पक्ष से वो लोग थे कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, रुक्मिणी जी डर गई किंतु कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और साथ साथ में बलदेव जी अपनी सारी सेनाओं को बच्चे गिर जाएंगे। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चल पड़े, बलदेव जी पहुंच गए युद्ध में सबको हरा करके और उन्होंने रोक दिया और सबको हरा दिया। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आगे बढ़े, इतने में उसका भाई प्रतिज्ञा करके चला या तो कृष्ण को मैं युद्ध में हरा करके अपने बाण को छुड़ा करके लाऊंगा और मैं तो कभी भी मैं कुंडी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेकर के और चल रहा। घना घोर युद्ध हुआ उसमें कृष्ण ने उसे हरा दिया और वो कृष्ण को मारने के लिए तलवार लेकर के चला, इसके बाद कृष्ण उसे पराजित करके और उसका मस्तक आधा मुंडन किया और वो इसको आधा और इसका आधा कर दिया और बेरुख कर दिया। कृष्ण जब मारने के लिए उसके उठे रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़ लिए, इतने में बलदेव प्रभु जी पहुंच गए, बोले कि कृष्ण आपने ये काम ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं है, रुक्मिणी का जैसे भी भाई है आपने तो बद से भी अधिक उसका अपमान कर लिया। फिर रुक्मिणी से कहते हैं देखिए ये काल के प्रभाव से ऐसा नहीं इच्छा करने पर क्षत्रियों का धर्म बड़ा भारी निश्चित होता है, यदि उसका सदा भाई भी यदि युद्ध में आ जाए सामने तो परस्पर लड़ करके मर जाते हैं, तो इसलिए कृष्ण का न्याय मत देखना। ठीक कृष्ण से कहते हैं भाई अब जैसा कहा उसको छोड़ दो, उसको बांध करके रख दिया उसी के चक्कर से उसको बांध करके पटक दिया, अब इसको छोड़ दीजिए। कृष्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है बलदेव जी, ये जीव भगवान का ही तदाश है किंतु अपनी स्वतंत्रता का व्यवहार कर भगवान को भूल जाता है और माया उसे पकड़ लेती है,
और इच्छा करने पर भी माया से एक को छोड़ नहीं पाता, तब नाना प्रकार की योनियों में वो जन्म ग्रहण करता है और कितने तरह के दुख और पाप को वो भोग करता है। भगवान अवसरित होकर के जीवन के कल्याण के लिए आते हैं और अपनी लीलाओं का ऐसा करते हैं, असुंदर जस का ऐसा रख जाते हैं कि पीछे से उनका स्मरण करके लोग बहुत आदर से कर जाते हैं। जैसा भी हो रुक्मिणी का सौभाग्य है जैसे कृष्ण के हाथों से अपमानित हुआ है, जैसा आप इसके लिए सुख मत करेंगे, सब उनको सांत्वना दें और बहुत सुंदर सुंदर सब उपदेश उसने दिए। इसके बाद में कृष्ण और बलदेव रुक्मिणी इत्यादि बने करके वहाँ पर गए, अपने वहाँ पर उनकी शादियाँ इत्यादि हुई। एक विशेष शिक्षा का विषय है बलदेव जी के चरित्र में देखा जाता है, ध्यानपूर्वक देखने से